मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 19 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी विशेष रूप से जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मनीष कुमार आप गया बिहार से हैं और बबीता सोनी आप गुना मध्य प्रदेश से हैं। तो मनीष और बबीता आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों मुख्य विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, दल परिवर्तन कानून पर, जिसे दल बदल कानून भी कहते हैं, उस पर बात करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ पर थोड़ी सी बातें करेंगे, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। मैं आज थोड़ी सी जानकारी आपको एक मेल के माध्यम से देना चाहूंगा। मित्र मेरे पास एक मेल आया है संगीता चौधरी का, जिन्होंने अभी जो राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इंटरव्यू था वो अभी वो फेस करके आई है। इस मेल को मेरे बताने का जो उद्देश्य है मित्रों, पहले मैं उसे स्पष्ट करता हूं। मेरे इस मेल के जो उद्देश्य है वो ये है कि यह एक स्टूडेंट की आत्म स्वीकृति है और उन्होंने लिखा है कि मैं सर ये मेल इसलिए लिख रही हूं कि मैं चाहती हूं कि आप इसे स्टूडेंट को बताएं ताकि वो इसका सही फायदा उठा सके। इसका सही फायदा का मतलब है इस डेली ऑडियो लेक्चर का सही फायदा उठा सके, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये रख रहा हूं। मित्रों होता क्या है, देखिए चाहे आप इन 15 दिन की क्लासेस में आए, चाहे आप कहीं कोई भी कोचिंग करें, चाहे आप ये डेली ऑडियो सुने, कुछ भी करें, अपनी जिंदगी में कोई भी काम करें, जो सबसे बड़ी बात होती है उस काम का फायदा लेने के लिए वो होती है आपका विश्वास, आपकी आस्था कि जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आपका विश्वास कितना ज्यादा है। आप कल्पना करके देखिए कि आपका एक साथी है जिससे आप जिसके ऊपर आपका विश्वास ही नहीं है और उसके साथ आप सफर कर रहे हैं, दिन भर आप पूरे समय तक आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन अगर विश्वास है तो आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ उस एंजॉय करेंगे उस जर्नी को। तो जब किसी चीज के प्रति हमारी आस्था हो जाती है, हमारा विश्वास जम जाता है, तो उसका हम सही पूरी तरह से फायदा उठा पाते हैं। बस मेरा सिंपल सा यह उद्देश्य है इस मेल को पढ़ने के पीछे, राइट। तो मित्रों उन्होंने लिखा है कि मैं जब इंटरव्यू देने गई तो उस समय मेरा मुझसे उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि आप कहां से हैं, जैसा कि सामान्यतः किसी भी इंटरव्यू में होता है, लेकिन उन्होंने दो प्रश्न पूछे। अब मैं उन्हीं के शब्द आपको आपके सामने रख रहा हूं। पहला, अभी मोदी जी ने कहा कि जो लोग साफ सफाई नहीं रखते उनको वंदे मातरम बोलने का कोई अधिकार नहीं, आप अपना ओपिनियन बताएं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह प्रश्न पूछा गया। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा कि पूजा करने से क्या फायदा होता है। अब आप संगीता चौधरी का स्टेटमेंट देखिए, वो लिखती हैं कि इसका आंसर मैंने सफाई से जोड़ कर दिया कि पूजा करने के लिए स्वच्छता जरूरी है और इससे पॉजिटिव एनर्जी रहती है। ये दोनों क्वेश्चन अगर मैं आपका लाइफ मैनेजमेंट नहीं सुन रही होती तो नहीं दे पाती, या अगर दे भी पाती तो इतना अच्छे से नहीं दे पाती जितना अभी मेरे आंसर से बोर्ड मेंबर सेटिस्फाई हुए हैं। तो इसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद देती हूं। अब आप देखें मित्रों कि हमने इस डेली ऑडियो में इसकी चर्चा की थी कि क्यों ये बात कह रहे हैं। बस आपको केवल यही सेंस पैदा करना है कि जो कुछ भी हो रहा है आप कैसे उसमें से अपने लिए महत्वपूर्ण चीजें निकालें। कल का अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा हो तो उसके अंत में अमिताभ बच्चन जी ने जो स्टेटमेंट दिया फिर से जनरल नॉलेज के बारे में, वो ऑब्जर्वेशन को लेकर के था कि सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आपका जनरल नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो मित्रों मैं जो आप लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूं वो ये कि आप जो भी काम करें और स्पेशली अगर आप इस डेली ऑडियो लेक्चर को, लाइफ मैनेजमेंट को इतना वक्त दे रहे हैं, तो उस वक्त का पूरा फायदा उठा सकें। ये तभी संभव हो सकेगा जब पूरे विश्वास के साथ आप इन्हें सुने और जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको थोड़ा फॉलो भी करें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में मैं बता चुका हूं, लेकिन आइए हम थोड़े से दूसरे न्यूज को देख लेते हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि रोहिंग्या का जो मामला है वो लगातार सेंसिटिव होता जा रहा है और चर्चा में भी आ गया है। हमने जब शुरुआत हुई थी म्यांमार, जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, उस समय मैंने इसके बारे में आप लोगों को इशारा कर दिया था, बता दिया था, आपको ध्यान होगा। अब आप देखिए कि वो किस रूप में सामने आ गया है। मित्रों, थोड़ी सी मैं रोहिंग्या के बारे में आपको बैकग्राउंड बता दूं कि आप जानते हैं कि ये म्यांमार के मुस्लिम हैं जो वहां के जो बौद्ध मतावलंबी हैं उनके साथ लगातार इनके संघर्ष होते रहते हैं। म्यांमार की सरकार भी इन्हें उस तरह के अधिकार नहीं दे रही है। खैर, वो उनका मामला है, राइट। तो ये वहां से पलायन करते हैं, तो बांग्लादेश में तो बहुत ही ज्यादा लोग गए हैं। म्यांमार का बॉर्डर देखेंगे वो बांग्लादेश पड़ता है और फिर भारत पड़ता है, और कुछ जो रोहिंग्या मुसलमान है वो भारत भी आ गए हैं। ये माना जाता है कि लगभग 40,000 के करीब जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो भारत में रह रहे हैं। हुआ ये कि इसी में से दो लोग जो शरणार्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा कि अगर उन्हें वापस भेजा जाता है, मतलब भारत से वापस भेजा जाता है दूसरे देश को, यानी कि म्यांमार को, तो यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। यह उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। और आपने देखा होगा कि न्यूज में इसके बारे में बताया गया, और कल दूरदर्शन न्यूज पर तो काफी डिटेल में इस पर चर्चा की गई है। और जो आए भी थे हमारे पार्थ सारथी जी थे, जो इंडियन फॉरेन सर्विस के बहुत रेपुटेड ऑफिसर रहे हैं और काफी प्रसिद्ध ऑफिसर रहे हैं, और जो म्यांमार में भारत के राजदूत भी थे, उनसे बातचीत हुई, अगर आपने सुना हो तो। अगर सुना होगा तब तो चीजें बहुत क्लियर हो चुकी होंगी। अब आप देखिए कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश कर दी है, और उन्होंने सबसे बड़ा जो बड़ी जो बात कही है, दो बातें सबसे बड़ी है। देखिए, बातें बहुत कही जाती हैं, उसमें से आपको मुख्य बातें पकड़नी पड़ती हैं। पहला तो यह है कि ये जो मामला है ये हमारे कानून नियम के विरुद्ध ही है, क्योंकि नागरिकता जो हमारे भारत के नागरिक हैं उन्हीं के मौलिक अधिकार होते हैं कि वो देश में कहीं भी जाकर के रह सके। तो शरणार्थी तो हमारे भारत के नागरिक नहीं है ना, तो ये मौलिक अधिकार की जो बात कर रहे हैं वो हमारे संवैधानिक और जो नियम होते हैं किसी भी देश के, उसके विरुद्ध है। फिर आपने देखा होगा कि ये भी बात कही गई कि जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग है खासकर मानव अधिकारों को लेकर के, उसके बारे में भी हमारे गृह राज्य मंत्री जी का स्टेटमेंट आ गया कि वो मतलब भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश न करें, क्योंकि उस आयोग ने भी ये कहा कि नहीं, भारत को चाहिए कि वह मानवता के आधार पर इन्हें अपने यहां शरण दे। दूसरा जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमारे कानून और नियम के ही विरोध है में है, हम कैसे दे दें उनको। और दूसरा, उन्होंने सिक्योरिटी की बात कही कि इससे पहले जो भारत का अनुभव रहा है कि बहुत से ऐसे रोहिंग्या मुसलमान रहे हैं, कुछ ऐसे पकड़े गए हैं जिनका संबंध पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई से रहा है और आईएसआईएस से भी रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे रहने वाले खासकर शरणार्थियों को हम नागरिकता कैसे दे सकते हैं। और फिर केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि देखिए, ये इस तरह के जो निर्णय हैं ये लेना कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका का नहीं है, और न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये तीन, समझ लीजिए, तीन चार सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बस इतना आपको जानना है मित्रों। और फिर थोड़ी बहुत चीजें जो आपको पढ़ने को मिलेंगी, आप उनको पढ़ते रहेंगे तो इस पर आपके अपने विचार एस्टैब्लिश हो जाएंगे, और परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे प्री में हो या मेंस में हो, तो आप उनके बहुत अच्छे से तार्किक उत्तर प्रोवाइड करने की स्थिति में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, दूसरी जो न्यूज है, कह लीजिए न्यूज में नहीं थी, अखबारों में है। आपने देखा कि हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं अभी, वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, इसको लेकर के अभी एक राष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो कीमतें कम हो रही हैं तो ये बढ़ाते क्यों चले जा रहे हैं। उस पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मंत्री जी केंद्रीय मंत्री हैं वो, उन्होंने कहा कि जो धनी लोग हैं वो कोई भूखे मरने वाले लोग नहीं हैं जो बाइक चलाते हैं और कार चलाते हैं, उनको अगर ज्यादा पैसा भी देना पड़ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उनको देना चाहिए क्योंकि इससे सरकार को टैक्स मिलता है और उस टैक्स का इस्तेमाल गरीब लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है, ये उनका स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट की भी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई और अखबारों में लेख भी आ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं एक दो एडिटोरियल कमेंट आज आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं। अब आप देखिए कि होता क्या है कि जो इकोनॉमिक्स का जो विषय है वो अपने आप में बहुत ही जटिल विषय है, एक तरफा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। अगर हम डायरेक्ट अगर मंत्री जी का ये स्टेटमेंट सुने तो लगेगा कि बिल्कुल सही तो कह रहे हैं कि अगर 2 रुपए लीटर ज्यादा पेट्रोल का देना पड़ गया तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी, भाई जो गाड़ी चला रहे हैं वो दे सकते हैं, व्यावहारिक रूप में बिल्कुल सही है। लेकिन जो इकोनॉमिक का जो मशीनरी है, अर्थव्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है वो इतनी जटिल है कि सिर्फ यही बात नहीं है, क्योंकि जब हम पेट्रोलियम और डीजल की बात करते हैं तो ये हमारे यहां का ईंधन है, ये हमारी यहां की ऊर्जा है, अगर इनके रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ रहे हैं, परिवहन लागत बढ़ रही है। जब परिवहन लागत बढ़ेगी तो सीधे सी बात है कि वस्तुओं का परिवहन हो रहा है, जब वस्तुएं तैयार की जाती हैं किसी भी एक स्थान पर तो पूरे देश में भेजी जा रही है, तो जब उनके परिवहन की लागत बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि उस वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी और वो जो वस्तु है उसका उपयोग गरीब आदमी भी कर रहा है। तो ठीक है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीधे गरीब आदमी नहीं कर रहा है, ये सीधे तो उस पर प्रभाव नहीं डालेगी लेकिन इनडायरेक्ट रूप में उस पर असर पड़ेगा। तो आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित जो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं या जो प्रोविजंस किए जाते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से क्यों ना किए जाएं, तो थोड़ा सा उसको व्यवहारिक स्तर पर जाकर के समझने की कोशिश करनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। अब मैं आता हूं आज का जो मुख्य हमारा विषय है, दल बदल कानून, दल परिवर्तन कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके ऊपर। मैं समझता हूं मित्रों कि आप समझ गए होंगे कि मैंने इस विषय को क्यों चुना है। अभी आपने न्यूज में सुना है कि जो तमिलनाडु में सरकार के सामने विवाद की स्थिति आ गई है, वहां जो सत्ताधारी पार्टी है उनमें विभाजन हुआ, इसको निकाला उसको निकाला, वो सब राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं और नतीजा ये हुआ कि वहां के जो 18 MLA थे वो दूसरी पार्टी में, मतलब उन्होंने मेन पार्टी छोड़ करके दूसरी बना ली जो भी है, और फिर ये मांग की जाने लगी कि अब जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है, उसे बर्खास्त किया जाए। ऐसी स्थिति में फिर स्पीकर ने कदम उठाया कि वो जो 18 MLA थे उन 18 MLA को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया, यानी कि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं रह गए। तो अब जो रिमेनिंग जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स के आधार पर अभी भी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका बहुमत है, ये लेटेस्ट सिचुएशन है। अब ये जो निकाले गए मेंबर्स हैं इन्होंने कहा है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, चलिए वो आगे की बात है। मित्रों यही सब स्थितियां होती हैं जो आपको पॉलिटी की तैयारी करने के लिए एक दिशा निर्देश देती हैं कि अब आप कैसे तैयार करेंगे। देखिए ये एक महत्वपूर्ण घटना है, इसी तरह की घटना कुछ समय पहले कर्नाटक में हुई थी, राइट। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है और दलबदल कानून चुनाव सुधार से भी जुड़ा हुआ है, राजनीतिक सुधार से भी जुड़ा हुआ है, सरकार के अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर देखेंगे तो इस तरह के विषयों पर अक्सर प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो यानी कि यह एक घटना, ऐसी घटना है जिसको आधार बनाकर आप दल बदल विधेयक, दल बदल कानून पर एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। मान लीजिए कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करने का आपका एक ग्रुप है, तो आप केवल इसी को लेकर के डिस्कशन करेंगे तो बात नहीं बनेगी, जब तक कि आप दल बदल कानून के बारे में अच्छे तरीके से समझ न लें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके बारे में, या जो कानून बना हुआ है वो कानून कहता क्या है। और अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो इसका मतलब है कि एक टॉपिक आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। आप ठीक है एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा इसकी गारंटी कुछ भी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम जो काम करते हैं वो संभावनाओं के आधार पर करते हैं और इसके पूछे जाने की संभावना है। तो जब आप दल बदल कानून का चैप्टर पलटेंगे तो आपको कुछ तथ्य जानने को मिलेंगे और वो आपके प्री में भी काम आएंगे और मेंस में भी काम आएंगे। अब देखिए कि आपको दल बदल कानून के बड़े लंबी लिस्ट मिलेगी कि ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, उनमें से आप सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजंस को कैसे याद रखेंगे, कैसे जानेंगे प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। देखिए जो 52वां संविधान 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1985 में, उस समय राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था, बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था, राजनीतिक दलों के सुधार के बारे में, चुनाव सुधार के बारे में, जो भी आप कहिए, या राजनीति में नैतिकता लाए जाने के मामले में, स्थिरता लाए जाने के मामले में बहुत ही बोल्ड स्टेप था 1985 में लाया गया। और हमारे संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसे दसवीं अनुसूची कहते हैं, दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। तो अब यह हुआ कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 और दसवीं अनुसूची ये दल परिवर्तन कानून से संबंधित है। अब आपको ये फैक्ट मालूम हो जाना चाहिए, राइट। अब देखिए कि इसमें क्या उपबंध किए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। बात यह है कि कोई भी सदस्य जिस दल से चुनाव लड़कर आया है, अगर वह चुनाव सदस्य बन जाने के बाद अपने दल की सदस्यता को त्याग कर कोई दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसने दल बदल लिया तो अयोग्य माना जाएगा। आप अयोग्य हैं, आप छोड़िए, आप नई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, पुरानी को छोड़ दीजिए और जाइए चुनाव लड़िए और फिर से लड़कर के आइए, लेकिन नई पार्टी के बैनर पर। इसी टॉपिक पर बहस की बहुत गुंजाइश है कि इससे क्या फायदा होंगे, इससे क्या नुकसान होंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही फ्रेंड्स कि जैसे सदन में हर पार्टी अपने अपने मेंबर्स को कहता है कि आप अगर वोटिंग हो रही है तो आपको इसके पक्ष में देना है, विपक्ष में देना है, तो ये भी प्रोविजन किया गया कि आपको पार्टी के निर्देश मानने पड़ेंगे और अगर आप पार्टी का निर्देश नहीं मानते हैं तो आपको जिस टिकट पर चुना गया है उस टिकट पर फिर आप उसका सदस्य बने रहने का अधिकार नहीं रह जाता। ये दूसरा प्रोविजन है। तीसरा है कि जो निर्दलीय सदस्य जो चुनकर आते हैं उनके लिए कहा गया है कि आप निर्दलीय के रूप में चुनकर आए हैं तो आप निर्दलीय ही बने रहिए, और अगर आपने किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली तो फिर आपको भी अयोग्य माना जाएगा। और इसी तरह की व्यवस्था जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होती है, उनके लिए भी है कि आप नॉमिनेशन के बाद 6 माह के अंदर यदि आप किसी राजनीतिक दल के 6 माह के बाद 6 माह के बाद यदि आप किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो आपको भी इसके अयोग्य माना जाएगा। तो मित्रों यह मतलब ये सामान्य रूप से प्रोविजन थे जो मैंने बताए हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है। वैसे आप अधिनियम को देखेंगे तो उसमें आपको और ढेर सारी चीजें जानने पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया 1985 में ये लागू हुआ, तो अब बीच में 15-20 साल का वक्त निकल जाने के बाद थोड़ी सी सुधार की जरूरत महसूस करती है। तो मित्रों इसी से रिलेटेड फिर 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया, याद रखिए 2003 में, उसमें थोड़े से संशोधन किए गए, मैं उन संशोधन पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय इतना नहीं है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई वो ये है कि जो मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर, वो टोटल सदस्य संख्या से, जैसे लोकसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं, लोकसभा के बहुमत दल का नेता, लोकसभा से प्रधानमंत्री नहीं बनते, लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, तो लोकसभा इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन था जो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लागू किया गया। तो इस तरह से जब हम तैयारी करते हैं मित्रों तो हमारी तैयारी बहुत स्ट्रांग होती चली जाती है। अब इस पर बहस करने की बहुत गुंजाइश है, इसके तार्किक पक्ष बहुत हैं, मैं वक्त की कमी के कारण उधर बात नहीं कर पा रहा हूं, देखिए कभी अब और यह विषय सामने आया तो हम उस पर बातें करेंगे। मित्रों मैं काफी आपको प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन्हें देख लेंगे। अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर, तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, रवि कुमार, शुभम बी देशमुख, जितेंद्र आर्य, अभिषेक जायसवाल, विपिन कुमार रांची झारखंड से, रोहित परमार सिरोही राजस्थान से, और रोहित कुमार, आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।